मगर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो लोग वापस आ गए? इंद्र ने उलझे हुए स्वर में पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो खुद सानवी को मनाने गया था, उससे इतने प्यार और धैर्य से बात की थी, फिर भी वो वापस आने के लिए तैयार नहीं हुई थी। उसके इस अचानक फैसले ने इंद्र को और भी हैरान कर दिया था। आलिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, असल में आर्यन ने रेस्टोरेंट को वापस शुरू कर दिया है। उसने रेस्टोरेंट बंद करने का जो फैसला किया था वो कैंसिल कर दिया। जब कैमल को ये पता चला तो उसने तुरंत सानवी को बुला लिया। इंद्र हैरानी से बोला, लेकिन सानवी तो वापस नहीं आना चाहती थी ना? हाँ, वो बिल्कुल नहीं आना चाह रही थी, आलिया ने धीरे से कहा, लेकिन कैमल ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने उसे साफ कह दिया कि अगर रेस्टोरेंट बंद नहीं हो रहा तो उसे भी वापस आना होगा। आखिरकार ये जगह सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, सानवी का सपना है, उसका अपना बनाया हुआ सपना। कैमल जानती थी कि सानवी इस जगह से इतनी आसानी से खुद को अलग नहीं कर पाएगी। इंद्र चुपचाप सुनता रहा। आलिया ने आगे कहा, बस इसी वजह से वो वापस आ गई। दिल नहीं था उसका आने का, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी बन गई कि उसे लौटना पड़ा। आलिया, जिसे सारी बात मालूम थी, उसने इंद्र को एक एक चीज विस्तार से समझा दी। इंद्र अब थोड़ी राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि कम से कम सानवी वापस तो आ गई थी, लेकिन उसकी वापसी के पीछे जो मजबूरी थी वो इंद्र के दिल में और भी बेचैनी छोड़ गई। आर्यन क्या करना चाहता है वो खुद भी शायद नहीं जानता था। उसका व्यवहार पिछले कुछ दिनों से इतना उलझा हुआ था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जा रहा था। कभी वो गुस्से में रेस्टोरेंट बंद करने की बात करता था, तो कभी अचानक उसे वापस खोलने का फैसला ले लेता था। इंद्र को लग रहा था कि आर्यन अपनी ही भावनाओं से लड़ रहा था, और ये लड़ाई अब उसके हर फैसले में छलकने लगी थी। इंद्र को आर्यन पर गुस्सा भी आ रहा था और हैरानी भी। उसके मन में धीरे धीरे ये बात बैठने लगी थी कि सानवी के वापस आने के पीछे सिर्फ कैमल की जिद नहीं थी, कहीं ना कहीं आर्यन का भी हाथ था। रेस्टोरेंट दोबारा शुरू करना शायद सिर्फ एक बहाना था, असल वजह कुछ और ही थी। इंद्र के दिल ने जैसे कह दिया हो कि उन दोनों के बीच अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कोई ना कोई धागा अभी भी बाकी है जो उन्हें जोड़ता है। तभी पीछे से आलिया ने धीरे से कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो इंद्र? सानवी वापस आ गई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इंद्र ने उसकी बात सुनी, और चाहे उसके दिल में कितनी भी उलझन हो, ये सच था कि सानवी की वापसी ने उसे अंदर तक राहत दी थी। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की सी रौनक लौट आई थी, जैसे किसी ने बुझती हुई उम्मीद में फिर से जान डाल दी हो। इंद्र खुद को रोक नहीं पाया और सानवी से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि आर्यन और जय दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे। आर्यन को सानवी के साथ खड़े देखकर इंद्र का दिल अनायास ही थोड़ा भारी हो गया। एक सेकंड के लिए उसे लगा कि शायद आर्यन का गुस्सा इतनी जल्दी नहीं उतरा होगा और वो सिर्फ रेस्टोरेंट की हालत देखने के लिए आया होगा, लेकिन फिर भी दोनों को साथ देखकर इंद्र के मन में हल्की सी कसक जरूर उठी। आर्यन और जय बिना कुछ बोले वहां से चले गए। उनका जाना माहौल को अचानक शांत कर गया। जैसे ही वे दोनों ओझल हुए, इंद्र ने गहरी सांस ली और खुद को संयत किया। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और सानवी के साथ रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अंदर एक अलग ही सन्नाटा था, जैसे सब कुछ स्थिर होकर देख रहा था कि आगे अब क्या होगा। रेस्टोरेंट की ऐड के लिए बने पैम्फलेट तैयार हो चुके थे, उनके कई कई डिजाइन बनकर आए थे जिन्हें देखकर फैसला करना था कि कौन सा फाइनल किया जाए। सुबह सुबह कैमल उन सारे पैम्फलेट्स का बड़ा सा पैकेट लेकर रेस्टोरेंट पहुंची। अंदर कीर्ति और सानवी पहले ही आ चुकी थी और काउंटर पर बैठकर दिन की शुरुआत की तैयारी में लगी थी। कैमल ने मुस्कुराकर कहा, आओ ये देखो, सारे डिजाइन आ गए हैं, इनमें से एक चुनना है, बताओ कौन सा अच्छा है। कहते हुए उसने पैम्फलेट्स को टेबल पर फैला दिया। सानवी और कीर्ति दोनों ध्यान से हर डिजाइन उठाकर देखने लगीं। कुछ में रेस्टोरेंट की खूबसूरत तस्वीरें थीं, कुछ में ऑफर्स और कुछ में साधारण लेकिन क्लासिक लुक। सानवी ने धीरे से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा चुने, ये सिर्फ पैम्फलेट पर नहीं चलेगा, यही डिजाइन सोशल मीडिया प्रमोशन में भी इस्तेमाल होगा, गलती की गुंजाइश कम है। कीर्ति ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें आर्यन राजवंश से बात करनी चाहिए, वो एक बिजनेसमैन है और ये सब उसकी फील्ड है, उसे मार्केटिंग और डिजाइनिंग के बारे में बहुत पता है, वो सही गाइड कर सकता है। कैमल ने तुरंत हामी भरी, मैं भी यही सोच रही थी, आर्यन से बात करना बेहतर रहेगा, वो ऐसे फैसलों में मदद कर सकता है। सानवी ने तुरंत चेहरा नीचे कर लिया, उसकी आवाज हल्की और लगभग टूटती हुई थी। आर्यन यहाँ कभी नहीं आएगा और ना ही मुझसे बात करेगा, इस बारे में बात खत्म करो कैमल, वो आर्यन से किसी भी हाल में सामना नहीं करना चाहती थी। पिछले दिनों की बातें, उस रात की बहस, उसका गुस्सा, सब उसके मन में ताजा था। उसे खुद पर शर्म भी आ रही थी और आर्यन के गुस्से से आज भी डर लगता था। उसकी आंखों में एक पल के लिए वो असहजता साफ दिखाई दे गई जिसे वो छुपाना चाह रही थी। कैमल और कीर्ति दोनों ने उसकी हालत महसूस की, लेकिन फिर भी वे जानती थीं कि सही फैसला लेने के लिए किसी अनुभवी राय की जरूरत है और वो सिर्फ आर्यन ही दे सकता था। अगर वो यहाँ नहीं आ रहा तो तुम लोग ही उसके पास चले जाओ, कीर्ति ने सहज तरीके से कहा। उसकी नजर उन पैम्फलेट्स पर थी जिनके बारे में जल्द फैसला लेना जरूरी था। कैमल ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, बात तो इसकी ठीक है, हम पहले भी तो उसके घर जाते थे, वो कभी मना नहीं करता था, तो अब भी जाना चाहिए, कम से कम उससे राय तो मिल जाएगी। सानवी ने ये बात सुनी और उसका चेहरा हल्का सा उतर गया। वो कुछ पल चुप रही, जैसे सही शब्द तलाश रही हो, फिर धीरे से बोली, आर्यन बहुत बिजी रहता है और हमें क्या पता कि वो इस वक्त कहाँ है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाना सही रहेगा। असल में ये सिर्फ एक बहाना था। सच ये था कि सानवी उस घर में कदम रखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। इतने दिनों बाद उसका सामना होते ही क्या होगा, वो क्या कहेगा, क्या उसकी आंखों में वही गुस्सा होगा, क्या वो उसे देखना भी चाहेगा। इन सब विचारों ने सानवी को भीतर से बेचैन कर दिया था। कीर्ति ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर सानवी की हिचकिचाहट को समझते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम उसकी चिंता मत करो। कैमल ने भी तुरंत कहा, हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बात कर लूंगी, मैं पूछ लूंगी कि वो कहाँ है और कब मिल सकता है, तुम बस परेशान मत हो। सानवी ने दोनों की ओर देखा, उनकी सहजता, उनकी हिम्मत उसे थोड़ी राहत दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बेचैनी उसी तरह बनी हुई थी। आर्यन का नाम आते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी और वो ये समझ भी नहीं पा रही थी कि ये डर था, शर्म थी या कुछ और। सानवी ने फिर कोशिश की, तुम अकेली चली जाओ कैमल, मुझे तो वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम किचन संभालना है, ये सब देखना मेरा काम नहीं है। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी जिसे वो छुपाना चाह रही थी। वो किसी भी तरह आर्यन का सामना टालना चाहती थी और बहाने पर बहाना बना रही थी। कैमल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने कहा ना चलो, क्या हर बात में इतना सोचती हो। और बिना उसकी और दलीलें सुने वो सानवी का हाथ पकड़कर उसे हल्का सा खींचने लगी। सानवी ने अनमने मन से प्रतिरोध किया, लेकिन जब कैमल ने जोर डाला तो आखिरकार उसे मानना ही पड़ा। उसका मन नहीं था, लेकिन वो ना कहने की हालत में भी नहीं थी। कैमल ने रास्ते में ही आर्यन को फोन लगाया, हेलो आर्यन, तुम कहाँ हो? आर्यन ने छोटे और सख्त स्वर में कहा, घर पर हूँ, अगर बात जरूरी है तो आ जाओ।
कैमल ने राहत की सांस ली और उसे बताया कि वे दोनों अभी पहुँच रहे हैं।